आज विश्व हास्य दिवस, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर महाराष्ट्र राज्य के अमरावती शहर से जानी पहचानी कवित्री, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर के विविध राज्यों में अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी, ऐसी कवित्री श्रीमती ममता महते अमरावती से मोबाइल वाणी पर आज आमंत्रित है। नमस्कार मैडम जी।
नमस्कार सर। नमस्कार। बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया और मेरे बारे में इतनी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई, मेरे श्रोताओं तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैडम जी, आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आज विश्व हास्य दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है, तो हम इसके पीछे का कारण आपसे जानना चाहते हैं कि यह आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है।
जी आदरणीय, एक्चुअली में जिस तरीके से अगस्त माह के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है ना, उसी तरह से मई माह के पहले रविवार को हास्य दिवस मनाया जाता है। और हंसी खुशी जीवन में ऊर्जा देने का काम करती है, तो इसलिए अपने एक मदन कटारिया जी करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज के इस दिन की शुरुआत की और लोगों में ऊर्जा फैले और हंसी मजाक से लोगों का जीवन ज्यादा अच्छी तरह से हो सके। वैसे भी आज के जीवन में परेशानियां बहुत हैं, तो इसलिए आज के दिन को हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
मैडम जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने प्राय प्राय देश के विविध राज्यों में अपने कविताओं के माध्यम से श्रोताओं तक का दिल जीता है, तो हम आपसे विश्व हास्य दिवस पर भी आपकी कुछ स्वरचित कविताएं श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो आज के दिवस पर आपकी पसंदीदा कविता कौन सी लोगों तक पहुंचाएंगे?
जी, मेरी एक चार लाइन है जिसे कई मंचों पर काफी सराहा गया, बहुत लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अब ये चार पंक्तियां जो है, इसको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। जनरली देखिए, हास्य व्यंग जो किया जाता है वो नेताओं पे होता है, राजनीति पे होता है और घर में पति पत्नी पे होता है, तो ये चार लाइनें इनको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, है ना जी। तो देखिए मैं देती हूँ। हंसी इन वादियों से भी, हंसी वो एक नजारा है। जब आप किसी को भी चुनते हैं ना, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो या फिर नेता क्यों ना हो, जब आप चुनते हैं तब आपको बड़ी उम्मीदें रहती है उनसे, लेकिन बाद में क्या होता है। हंसी इन वादियों से भी, हंसी वो एक नजारा है, पथरीली सी राहों में संभाले जो सहारा है, हिचकोले लगे राहों में तो समझ में ये आया, क्या हिचकोले लगे राहों में तो समझ में ये आया कि ऑडी समझ के ली थी जो वो गाड़ी खटारा है, ऑडी समझ के ली थी जो वो गाड़ी खटारा है। तो ये पंक्तियां मेरी राजनीति स्तर पे भी, घर के स्तर पे भी, सामाजिक और पारिवारिक स्तर पे भी काफी सराही गई और काफी हिट भी हुई है।
मैडम जी, आपने मध्य प्रदेश राज्य के सौसर विकास खंड के ग्राम रामाकोना में भी विगत दिनों श्री एकनाथ श्रेष्ठी महोत्सव पर आयोजित कवि सम्मेलन में दर्शकों की बहुत सी तालियां बटोरी थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे पुनः कि रामाकोना में आपने किस तरह दर्शकों की तालियां बटोली थी और कौन से हास्य व्यंग आपने प्रस्तुत किए थे।
उस समय में ज्यादातर मैं महिलाओं के फेवर में करती हूँ इसको, मतलब तो महिला वर्ग भी था और नेताओं राजनीति पे करती हूँ, तो नेता लोग भी वहां पे बैठे हुए थे, हमारे सांसद विधायक माननीय रामाकोना के, जो पंचायत वर्ग के जो हमारे काफी मुख्य अतिथि वहां पे विराजमान थे, तो उन लोगों ने भी इस चीज को काफी पसंद किया था। तो मैं उसके लिए मैं आपको एक पंक्तियां ऐसी, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी पंक्तियां, ये बिल्कुल मेरी सिंपल सी कविता है, छोटी सी, जिसने काफी दर्शकों की तालियां बटोरी थी। मैं ये थोड़ी सी वैसी कविता है, मैं इसको सुना दूं, मतलब पूरी कविता इसको सुना दूं आपको, तो आपके ये दर्शकों तक पहुंच जाएगी ये कविता भी, है ना, चलेगा इतना समय है
जी।
जो कविता मैंने ये सुनाई थी वहां पे, ये कि बीवी एक थाने आई, थाने में रपट लिखाई, पति मेरा गुम हो गया है ढूंढ के तो लाओ जरा, कि बीवी एक थाने आई, थाने में रपट लिखाई, पति मेरा गुम हो गया है ढूंढ के तो लाओ जरा, थानेदार ने बिठाया ठंडा ठंडा जल पिलवाया, रो मत चुप हो जाओ अपने पति का हुलिया बताओ। तो बीवी बोली, ऊंचा कद गोरा रंग चाल मद मस्त है, घुंघराले घने बाल तीखे नैन नक्श है, कि ऊंचा कद गोरा रंग चाल मद मस्त है, घुंघराल घने बाल तीखे नैन नक्श है, पास खड़ी सखी चकराई हैरत से आंखें झपकाई, मोटे नाटे काले पति में ये परिवर्तन कबले आई। तो बीबी ने मतलब समझाया, उसकी उलझन को सुलझाया, कि जो गया सो तो गया, पर अब तो कोई ढंग का आए। तो ये इस कविता ने मेरी वहां पे काफी तालियां बटोरी थी। और इसके साथ में मैंने एक और सुनाई थी कि शादी का लड्डू खा बैठी मैं भोली बेचारी, अरे शादी का लड्डू खा बैठी मैं भोली बेचारी, भगवान क्यों लगा दी मेरे साथ ये पति नाम की बीमारी, मेरी मती गई थी मारी अच्छी खासी थी कुंवारी, मेरी मती गई थी मारी अच्छी खासी थी कुंवारी। तो इन पंक्तियों ने मेरी काफी तालियां बटोरी थी। उसके साथ में मैंने राजनीति पे भी व्यंग किया था, तो उसने भी बहुत तालियां बटोरी थी।
तो वो भी बता दीजिए, आज वैसे भी विश्व हास्य दिवस है, और चूंकि राजनीति के बगैर देश में कुछ होता, तो हम राजनीति पर भी आपका हास्य व्यंग सुनना चाहेंगे।
कि ये कुर्सी पे है अभी, हमारे जो राजनीति चल रही है उसमें हमारे पप्पू जी का बड़ा योगदान है, तो बस चार लाइनें मैं पप्पू जी को भी समर्पित करती हूँ कि राजनीति में कभी भी कुछ, जिंदगी में कभी भी कुछ खास ना हुआ, जिंदगी में कभी भी कुछ खास ना हुआ, राजनीति में भी ऐसा कुछ झक्कास ना हुआ, और कर ना सके एग्जाम से पहले पेपर लीक, इसीलिए तो अपना पप्पू पास ना हुआ, इसीलिए तो अपना पप्पू पास ना हुआ। और राजनीति का कमाल है ये, देखिए हमारी जो राजनीति है आज की वो किस तरीके से चल रही है, कैसी चल रही है, कि मैं वोटर बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा, अपना मुर्गा समझ समझ के सबने दाना डाला, प्रजातंत्र जैसे वोटों का व्यापार हो गया, भारत तेरा संविधान लाचार हो गया, लाचार हो गया। और हमारी आम जनता की जो स्थिति है, हमारी आम जनता की स्थिति कैसी है, ये आम जनता है और आम फलों का राजा है। अभी तो आम का सीजन है, आप बहुत अच्छे से आमों का स्वाद ले रहे होंगे, लेकिन हमारी आम जनता की स्थिति कैसी है वो भी देखिए। ये फलों का राजा है पर फिर भी है ये आम, ये फलों का राजा है पर फिर भी है ये आम, राजनीति के गलियारे में बिकता बिना दाम, पिलपिला ये आम का अचार हो गया, भारत तेरा संविधान लाचार हो गया, लाचार हो गया, लाचार हो गया। और इस तरीके से कई सारी रचनाएं वहां पे मैंने दी थी, तो इसी तरीके से हास्य का माहौल बन गया था, और आज भी हास्य दिवस है तो ये मेरी कुछ रचनाएं हास्य को समर्पित।
मैडम जी
रचनाएं तो कई हैं जी।
जी मैडम जी, जैसा कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो जलवायु परिवर्तन बहुत ही देखने में आ रहा है, एक ही दिन में हमको तीन ऋतु देखने को मिल रहे हैं, ठंड, दोपहर बारिश, दोपहर धूप, तो शाम को बारिश, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, मेरा यही बोलना है कि ये मनुष्य के हाथ में है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। हम ही अगर पर्यावरण को ध्यान नहीं रखेंगे, जिस तरह से पेड़ कटे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, धरती का दोहन हो रहा है, तो ये तो हमारे ही हाथ में है कि हम अपनी इस धरती की रक्षा करें और पर्यावरण को बचाएं।
क्या इस पर भी आपने कोई कविता लिखी है?
जी सर, इस पर भी मैंने, मेरी चार लाइन है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं एक कविता और आपको हास्य की देती हूँ कि एक दिन मेरी और इनकी जो हुई लड़ाई, सोच लिया मैंने कि मैं आज मर जाऊंगी, मरने से पहले टांगने के लिए लेकिन बढ़िया से एक तस्वीर बनवाऊंगी, तस्वीर में कुछ होना हो मगर पर गले में एक नौलखा जरूर लगवाऊंगी, कि मेरी सौतन आएगी नौलखा ना पाएगी, लड़ेगी वो इनसे मैं तभी सुख पाऊंगी, लड़ेगी वो इनसे मैं तभी सुख पाऊंगी। तो ये भी मेरी हास्य की थी, और मैं आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए जो हमारे चल रहा है उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ।
जी,
कि जिंदगी में कोई सुर कोई साज ना होता, संसार का कोई अंत कोई आगाज ना होता, न रहते कोई परिंदे न पंछी न हम, अगर ये धरती और ये आसमान ना होता। तो इस धरती और आसमान को बचाने के लिए, इस पर्यावरण की रक्षा करना हमारा ही फर्ज है, हमारा ही काम है, ताकि हम ये एक ही दिन में तीन तीन ऋतुएं ना देख सके और चार चार महीने बाद हर ऋतु का आनंद ले।
मैडम जी, जैसा कि आज विश्व हास्य दिवस होने के साथ साथ राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती भी है, इस जयंती के अवसर पर आप एक कवि होने के नाते क्या कहना चाहेंगे?
रविंद्रनाथ टैगोर जी देश के महानतम कवि थे, मैं तो यही कहूंगी। बंगाली में रचनाएं उन्होंने की और एक तरह से बंगाल साहित्य ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं ने हमारे इधर प्रांत के जो कवि थे उनको एक तरह से दिशा निर्देश दिया है। ये अतिशयोक्ति हो सकती है लेकिन सही में मैं मानती हूँ इस चीज को कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं थी और उस जमाने में उन्होंने जो रचनाएं की है, मतलब वो तो काफी पिछड़ा हुआ काल कहा जाता है, लेकिन उस जमाने में उन्होंने जो लिखा है, चाहे वो कविता हो कहानी हो, उसमें जो विमर्श की बातें हम आज करते हैं, शायद आपको पता होगा कि विमर्श बहुत चलते हैं आजकल, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान विमर्श, दलित विमर्श, ये सारे विमर्श चलते, उस विमर्श को उन्होंने उस समय में उठाया। तो मैं तो यही कहूंगी कि पूरा देश को भी दिशा निर्देश दी और विश्व में भी उन्होंने काफी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरणा और जगत को जागरूक करने का काम किया है। आखिर में मैं बोलती हूँ कि जब पहला नोबेल पुरस्कार जब शुरू हुआ तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहला उन्हें ही दिया गया, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, कुछ तो रचनाएं उनकी होंगी ना ऐसी ही जिस पे उन्हें ये पुरस्कार दिया गया।
मैडम जी, आज उनके जयंती के अवसर पर आप उनके द्वारा रचित कोई उनकी कविता श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।
मुझे उनकी, जैसे उनका तो खैर राष्ट्रगीत तो सभी को पता है, लेकिन मैं माफी चाहूंगी कि मुझे उनकी कोई कविता ऐसी याद नहीं है। हाँ, उनकी कहानियां मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं उनकी कहानियां बहुत पढ़ती हूँ।
तो उनके कहानियों में से कोई प्रेरक प्रसंग बता दीजिए।
उनकी कहानियों में प्रेरक प्रसंग एक कहानी है उनकी डाकुओं पे आधारित, उसमें आज की जो स्थिति चल रही है सर जी, हिंदू मुस्लिम को लेके जो हम राममयी और मतलब ये जो चल रहा है, उस कहानी में उन्होंने जो ये दिया था, संदेश दिया था कि डाकू रहता है, डाकू हिंदू लड़की को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन वो उस हिंदू लड़की की परवरिश इस तरीके से करते हैं कि आपको लगेगा नहीं कि हिंदू है या मुस्लिम है या मतलब कोई धर्म को लेके कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है क्या। और बाद में वो उसको सकुशल उसके घर भी पहुंचा के आते हैं, लेकिन वो लड़की के घर वाले उसको रखने से मना कर देते हैं, तो वो फिर उसको अपने पास करते हैं। तो इस कहानी से मतलब ये प्रेरक प्रसंग इस तरीके से हो सकता है कि इस कहानी से ये आज की जो स्थिति चल रही है उसमें हमारे देश में जो अभी ये अलगाववादी परिस्थितियां जो जन्म ले रही है, ये अलगाववादी परिस्थितियों को समाप्त किया जा सकता है कि इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में आपने विश्व हास्य दिवस के अवसर पर जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, गागर में सागर भरने जैसी महत्वपूर्ण बातें कम शब्दों में बहुत अधिक कही, इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के जयंती पर उन्हें नमन करते हुए विश्व हास्य दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है।
धन्यवाद सर, धन्यवाद मुझे चुनने के लिए और मेरी हास्य रचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।